તારીખ 26/12/1995 શ્રી અનુભવ પ્રકાશ ગ્રંથ પાના નંબર 7 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું રીડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 146
की बुद्धि वहाँ प्रवेश करती है, वो शरीर में खोज करती है, तो लगता है कि शरीर हिलता चलता है, तो वो है तो इधर ही कहीं, है तो कहीं इधर ही है, लेकिन शरीर में तो दिखने में आता नहीं है। फिर आगे बढ़ता है तो कर्म में उसकी क्रिया देखें कि ये दूरी कौन हलाता है। द्रव्य कर्म गुफा के अंदर प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभार ऐसा नाम भी राजा के निमित्त से पड़े हैं। अगर विभाव रस तीव्र होता है तो कर्म का अनुभाग तीव्र पड़ता है, और स्थिति अघाती में लंबी होती है, घाती में कम होती है। ऐसे कर्म की प्रकृति का अलग अलग गुण है। ऐसे प्रदेश और प्रकृति एक भाव करते हैं तो ज्ञानावरणी आदि 7 या 8 प्रकृतियों का कर्म बंध होता है, और अपने अपने प्रमाण में उसका कर्म परमाणु का जत्था आता है, संबंध करता है, बंध को प्राप्त करता है, उसको प्रदेश कहते हैं। कर्म के परमाणु की संख्या को प्रदेश कहते हैं, कर्म के प्रकार को प्रकृति कहते हैं, कर्म के फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं, और जितने समय वो आत्मा के साथ संबंध रख करके पड़े रहते हैं उसको स्थिति बंध कहते हैं। फिर बाद में उदय में आते हैं, बंधते हैं उस वक्त वो उदय में नहीं आते हैं, बंधने के बाद अपने अपनी स्थिति पकने पर उदय में आएगा। उस प्रकार से ये जो कर्म के विभाग है वो भी जीव के परिणाम के निमित्त से हुए हैं। राजा की परिणति जैसी जैसी हो रही है वैसी वैसी वर्गणा बंधानी, जैसे परिणाम किए वैसे वैसे कर्म बंधाए, डिग्री टू डिग्री। क्रोध करे तो क्रोध प्रकृति का बंध होगा, माया करे तो माया प्रकृति का बंध होगा। ऐसे वहां भी राजा की बनी हुई सत्ता से द्रव्य कर्म का नाम पड़ा। ये परमाणु का नाम कहाँ से पड़ा? कि जैसे जैसे परिणाम करे वैसा उस प्रकृति का नाम दिया। यहाँ भाव में क्रोध किया तो प्रकृति का नाम जो संबंध में आया उसको क्रोध प्रकृति बोला। जैसा भाव करता है परमाणु में वैसा रस पड़ता है, ऐसा फलदान करने फल देने का योग्यता आती है। तो कुदरती व्यवस्था है, तो परमाणु के गुण धर्म की कुदरती व्यवस्था है। उसका भी बंद करता है, भाव करेंगे तो बंद हो गए, भाव नहीं करेगा तो बंद नहीं होगा। भाव कब नहीं करेगा? कि स्वरूप में लीन रहेगा तब। स्वरूप में जोड़ान हो गए तो भाव नहीं होगा, वरना भाव हुए बिना रहेगा नहीं। तो द्रव्य कर्म का नाम भी परिणामों के अनुसार हुआ है, तथा उस भावों के निमित्त से भूतगल अनेक विध कर्म के नाम प्राप्त हुए। इस भावों के निमित्त से ही भूतगल के अनेक विध नाम पड़े। भाव कर्म गुफा में उतना द्रव्य कर्म की बात दिया, वहां भी चैतन्य का अस्तित्व यानी चिदानंद राजा वहां बैठा नहीं है, तो निमित निमितिक संबंध से उसकी हलचल देखने में आती है। अब बात रही भाव कर्म की, कि भाव कर्म गुफा में राग द्वेष मोह के प्रकाश में छुपा हुआ स्वरूप कहते हैं, कहता है भाव कर्म गुफा में राग द्वेष मोह के प्रकाश में छुपा हुआ स्वरूप पड़ा है रहा है। यह प्रकाश तेरे नाथ का अशुद्ध सांग है, वो जीव के परिणाम है ना, और अशुद्ध परिणाम है तो जीव का वेश है, उन्हें अशुद्ध कपड़े पहन लिए, मैले कपड़े पहने। प्रकाश मैंने बाहर आया हुआ, प्रकाश मैंने प्रकट हुआ, राग द्वेष मोह आदि भाव प्रकट हुआ, तो प्रकाश नहीं भैया ने पोता पोत प्रकाश हो, प्रकाश से बाहर आए वो प्रकट थे। यह तेरे नाथ का अशुद्ध स्वांग है, उसमें तो खोज भाई भाई को न प्राप्त हो, भाई पाने की जरूरत, भाई पाने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम ले, निशंक जा, तो आगे बढ़, निशंक जा मैंने आगे बढ़, निशंकता से आगे बढ़, ये राग द्वेष मोह की डोरी के साथ जाकर के खोज। देखो एक बहुत प्रैक्टिकल बात, सूक्ष्म बात यहाँ किया है, यह राग द्वेष मोह की डोरी है जिस प्रदेश से उठी, देखो कहाँ से उठी है, किस क्षेत्र में उठी है, प्रदेश मैंने क्षेत्र, जिस प्रदेश से उठी वही तेरा नाथ है, ये चैतन्य पिंड है वही तेरा नाथ है, जिस क्षेत्र में ये राग द्वेष मोह की उत्पत्ति होती है वो चैतन्य पिंड है, वही तेरा स्वरूप है, वही तू हो। अब उस डोरी को मत देख, ये राग द्वेष मोह की डोरी को मत देख, उसको छोड़ दे, जिसके हाथ में यह डोरी है उसको उसको पकड़ने से तुम तुरंत मिलेगा, कुदरत मलिक हो जाए वड़गवा थे तुरंत मल से, वड़गना मैंने क्या बोलते हैं हिंदी में,
छिपकना,
ठीक है। राग द्वेष मोह जिसके हाथ में है, ये डोरी जिसके हाथ में है, ऐसे उस चिदानंद राजा उसके चिपकने से तुमको उसका भेंट हो जाएगी, उसकी साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। तेरा नाथ निज ज्ञान महिमा को छुपा करके वहां बैठा है, उसमें ज्ञान बहुत बड़ा है, ज्ञान की महिमा तो कोई अलौकिक और अद्भुत है, वो छिपा करके बैठा है, बहुत भरा है, इतना बार प्रकट दिखने में नहीं आता है लेकिन बहुत भरा है, वो छिपा करके बैठा है, उसको तुम चिपको, उसको तुम पिछानो, उसको पिछानो कि कितनी सामर्थ्य है। यह गुप्त ज्ञान हुआ, यह गुप्त ज्ञान होने से तेरा नाथ छुपा हुआ रहेगा, उसमें से शक्ति प्रकट होने लगेगी, शक्ति का विकास होकर के पर्याय में बाहर आएगा, पहचान होते ही उसका विकास चालू हो जाएगा। कोनी सत्ता मा थाय छे, वो उस क्षेत्र को, उस चैतन्य पिंड को, किस भूमि में वो उगता है, तो उसको छोड़ करके उस भूमि को पहचान, वहां तो चिपक तेरे आत्मा में चिपक। इसलिए नोवा कि तेरा नाथ छुपा हुआ रहेगा, वहां तू चेतना प्रकाश रूप चिदानंद राजा को प्राप्त करके सुख पाएगा, जैसा चिदानंद राजा मैं हूं ऐसा अनुभव होगा, तो साथ साथ वचनातीत सुख भी होगा, स्वरूप का अनुभव में सुख का अनुभव भी साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सूक्ष्मता से प्रश्न होना आवश्यक है, क्योंकि लिखने में तो मोटी मोटी बात आती है, सूक्ष्म बातें हैं वो उसमें समझनी चाहिए, इतना प्रश्न ही होना चाहिए कि ये खोज हमको करनी है और हम खोज में गए तो शरीर जीवंत शरीर और मुर्दा में फर्क नजर आता है। अनेक प्रकार के कर्म प्रकृति का उदय भी नजर आता है। क्यों? हम ऐसे ही बैठे थे, अंदर गड़बड़ चालू हो गई, कहां से द्रव्य कर्म का उदय आया। भाव कर्म है, अपने परिणाम है, खुद ही आकुलता का अनुभव कराता है। भाव कर्म तक आया, अपने परिणाम तक आया। अब कहते हैं कि भाव कर्म किसने कराया वो बात तू छोड़ दे, यदि वो आदत बुरी है अच्छी नहीं है। किसने मुझे राग कराया उसने मुझे वो कराया वो बात नहीं है। दूसरे लोग ने हमको दूर रखा, क्या चला था है? ऐसे ऐसे लोग थे कि वो हमको दूर रखते थे है? इनके परिणाम कुछ भी हो लेकिन वो रख सकते हैं नहीं है, रख सकते हैं क्या नहीं, वो परिणाम कर सकते हैं उतनी बात जरूर है, लेकिन दूर रहना समीप आना ये अपने परिणाम की बात होती है, वो परिणाम कुछ कर करा सकते नहीं है। हमारे परिणाम चाहे राग के द्वेष के मोह के जो भी विभाव परिणाम है वो कोई नहीं कराते, हम खुद ही करते हैं। जब ये न्याय को अंगीकार किया और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा है तब हमारा हमारी नजर दूसरों से हट गई, हमारा कनेक्शन छूट गया दूसरों से कि दूसरों के साथ हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे में जो होता है गड़बड़ वो हमारे कारण से होता है, वो संत की पहली शिक्षा है, तेरे दोष से तेरा बंधन है, वो संत की पहली शिक्षा है। तो फिर क्या हुआ कि फिर इधर उधर देखने का नहीं रहा, मुझे कोई कुछ कराता है वो बात नहीं रही, अब मुझे में होता है तो मेरे में ही मुझे देखना रहा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो वहां से एक साइड बंद हो गई, बार का शटर बंद हो गया, दूसरा तो कोई कराता नहीं, अब जो होता है मेरी गड़बड़ मेरे कारण से, उसका सुधार मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, दूसरों से दृष्टि नहीं रखो, कोई नहीं रोक सकता, किसी को रोकने की किसी दूसरे में ताकत है ही नहीं, और कोई रोकता है ऐसा लगता है वो हमारा प्रतिबंध है और कुछ नहीं है, नहीं है। स्वयं ही स्वयं की गड़बड़
अंदर की मुट्ठी है।
कुछ बेंसरी 15 साल की उम्र में सत्संग के लिए घर छोड़ से कर करके निकल गई थी, न उसने अपने ससुराल की परवाह की, शादी हो गई थी लेकिन वो ससुराल के घर रहती नहीं थी, साल भर वो अपने बड़ी बहन के वहां रही, माँ तो बहुत बचपन में गुजर गई थी, माँ तो नहीं थी लेकिन बड़ी बहन के वहां वो रहती थी, तो साल भर वहां रही, वहां सत्संग की भावना हुई, आत्मकल्याण की भावना हुई, देखा कि इस देश में परदेश जैसा देश है, इस देश कैसा है प्रदेश जैसा है, यहाँ तो कोई सत्संग का योग देखने में आता ही नहीं, मेरा जीवन जिंदगी यहाँ खत्म हो जाएगी, पूरा मनुष्य भाव खत्म हो जाएगा। तो बहन को कोई इजाजत तो देने वाले थे ही नहीं, हाँ भरने वाले तो थे ही नहीं, इसलिए रजा लेने का विवेक, लौकिक जो लौकिक विवेक कहते हैं वो विवेक रखा नहीं, वो भी मालूम हुआ तो लोग समझेंगे कि ये अविवेक है, लेकिन लौकिक रीति से परांगमुख हुए बिना मेरा कार्य कैसे सजेगा, छोड़ करके निकल गई। कोई सामान लिए बिना, कोई सामान लिया नहीं, पहने कपड़े ऐसे चल दिया। और सत्संग के लिए तो महाविवेक किया, कौन उसके रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकते। उस वक्त कुछ किसी को कैसा भी लगा हुआ होगा, लेकिन अगर ये कदम नहीं उठाते तो इन दिनों में अगर वो कदम नहीं उठाया तो क्या होता कि जिंदगी वैसे ही निकल जाती, और एक कदम उठाया तो जीवन की दिशा बिल्कुल
बदल गई,
बदल गई।
पहले कदम, पहले कदम में बदल गई,
साहस किया, घर छोड़ने का साहस किया, किया। आप लोग कुछ घर में गड़बड़ करोगे तो कहेंगे कि शशि भाई वही सिखाते हैं ऐसे ऐसी बात करके सबको यही सिखाते हैं क्या, हमारे घर में अशांति पैदा कर दी, ये बात हो जाएगी, अशांति की बात हो जाएगी। किसको सामने वाले को या अपने को, सामने वाले को क्या होगा, उसको तो अशांति होगा ना।
भाई जी जिसको हमारी शांति देखकर शांति होती है तो हमारा दुश्मन हुआ, जिसको हमारी शांति देखकर कर शांति होती है तो हमारा दुश्मन हुआ, वो हमारा अपना काम हुआ।
इसलिए अगर कोई कदम उठाओ तो देखा देखी से उठाना
नहीं,
अपनी भावना से कुछ भी हो गए देखा देखी से कुछ करना
नहीं
है कि बेंच ने ऐसा किया हम करें, फलाना ने ऐसा किया हम करें, देखा देखी का काम नहीं है ये। अंदर से भावना हो और सहज हो जाए तो भावना ऐसी बलवान होती है तो रोकने से रोकी जाती
नहीं है,
यहाँ कहते हैं कि ये खोज कैसे करना, प्रश्न तो वो चला था प्रैक्टिकली वास्तव में हमको हमारे में तो द्रव कर्म नो कर्म को छोड़ करके भाव कर्म तक आया है। अब भाव कर्म के साथ क्या है, ज्ञान भी है, वो ज्ञान में भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप विराजमान है, हमारे हाथ से हीरा गिर गया और यहीं गिरा है, इसलिए खोजना कहाँ है, यहीं खोजना है। यहाँ गिरा और हम बाहर जाके खोजने लग जाए तो कभी मिलने वाला नहीं है। तो भगवान ने ये कहा कि तेरा चैतन्य राजा तेरे ज्ञान में विराजमान है, खोजने वाला भी ज्ञान, और जहाँ खोजना है वो ज्ञान में ही, अपने में ही ज्ञान को खोजना है, और कहीं इधर उधर जाना नहीं है। वो खोजक वृत्ति जो है, खोजने वाली, खोज करने वाली जो खोजक वृत्ति होती है, उनको ज्ञान को छोड़ करके कहीं और खोजना नहीं है, वरना पूरा परिश्रम बेकार जाएगा। तो ज्ञान में खोजे जहां तक नहीं प्राप्त हो वहां तक खोजे। ज्ञान अनुभव में आता है, ज्ञान समझ में आता है, तो ज्ञान में मेरा ज्ञान स्वभाव ये मुझे क्यों नहीं दिखता है, स्वभाव क्या है इसमें? ज्ञान तो मालूम पड़ता है, ज्ञान मालूम पड़ता है तो स्वभाव क्या है इसमें? उसकी तीव्र जिज्ञासा से ज्ञान को खोजक वृत्ति से देखते रहें, खोजते रहें, तो स्वभाव का पता चल जाएगा, उसकी पहचान हो जाएगी। जहां तक नहीं मिले वहां तक पता नहीं मिले, वहां तक इस बात को, इस प्रकार के प्रयत्न को छोड़ना, पीछे पर लग जाना, एकदम पीछे लग जाना कि एक ही काम करना है, यही एक काम करना है, इसके सिवा फिलहाल वर्तमान में मेरा कोई काम
नहीं है,
एक ही काम है मेरे जुम्मे में, मेरे में मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप देखूं, जहां तक मुझे देखने में नहीं आए वहां तक मैं खोजूं ढूंढूं, उसके सिवा मुझे कोई काम करना
नहीं है।
खोजने की तीव्र भावना से, तीव्र जिज्ञासा से, तीव्र वृत्ति से वो मिलता है, नहीं मिलता है ऐसा किसी को नहीं बना है, तो गारंटेड मिलेगा, लेकिन एक लक्ष्य से, एक निष्ठा से, एक ध्यान से इसकी खोज से चलनी चाहिए, तब मिलता है। उसमें हमारे एकाग्रता नहीं है या इधर उधर भी हमारे परिणाम जाते हैं, तो खोज बराबर चलती ही है। गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, अच्छा बढ़िया दृष्टांत है, कि अंधेरे में हम खड़े हैं, हमारे हाथ में एक मोती, बारीक मोती भी है, कैसा बारीक छोटा सा मोती भी है और सुई भी है, तो मोती में सुई परोने की है ना? और अंधेरा है इसलिए उसका जो होल है वो दिखता नहीं है। अब क्या है कि पाव सेकंड के लिए एक बिजली का झपकारा होएगा, चमकारा होएगा, उस वक्त परो देना है, तैयार रेडी रहना, क्या
एकदम
रेडी रहना, जैसा जब करा हुआ उतनी तत्परता। दृष्टांत में क्या क्या तथ्य क्या है, उसका सार क्या है, कि उतनी तत्परता होनी चाहिए भीतर में, उतना धैर्य होना चाहिए, उतनी सूक्ष्मता से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वभाव है सूक्ष्म है, कैसा है, अति सूक्ष्म स्वभाव है, और हमने कभी अनंत काल में इस प्रकार का काम किया नहीं है, इसलिए हमको कठिन लगे, फिर भी कितना भी कठिन हो हमको करना ही है, ऐसा निश्चय रखना है। कठिन है इसलिए छोड़ देना, ये बात तो बराबर करना ही है, जहां तक नहीं हो वहां तक पीछे लग जाए, वो तो हमको काम करना है तो सब सुविधा हो जाएगी, और हमको काम नहीं करना है तो सब बैठे हमारे काम के नहीं है,
तो काम करके जाएंगे, तो यहां से काम करके ही जाएंगे।
वो जितनी ज्यादा चलेगी अवलोकन सूक्ष्म होता जाएगा, जब अवलोकन सूक्ष्म होगा तो सूक्ष्म स्वभाव नजर, अवलोकन जहां तक स्थूल रहेगा सूक्ष्म स्वभाव नजर आएगा, ये बात है। दूज का दृष्टांत दिया था, सुधी बीज होती है आकाश में, बस पतली सी लकीर होती है, बहुत पतली, जल्दी से नजर नहीं आती है। तो दृष्टि को इधर उधर से हटा करके एक जगह देखने के लिए कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ती है, तब दिखने में आती है। इस तरह से ज्ञान में अपने में, ज्ञान में अपना अपने में, ज्ञान अपने में देखने लगे कि मेरा स्वभाव स्वरूप क्या है, जो बदलता नहीं है, जो चालू चालू अन्वय रूप एक रूप रहता है, कहीं भी नहीं बदलते हैं, अवस्था बदलती है, विचार बदलते हैं ज्ञान में, लेकिन कहीं टुकड़ा तो होता नहीं, चालू रहता है कोई तत्व, बदलने का जो होता है उसको गौण करके जो चालू रहता है उसको देखे, तो अपना एक रूप स्वरूप जो है ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वरूप वो दिखने में आता है बराबर।
अंडरटोन पकड़ाएगी,
वो स्वरूप ही स्पष्ट रूप से पकड़ने में आता है, परमार्थ की स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति, उसका वेदन नजर आता है, वो अनुभवांश है और वेदन से स्पष्ट परम तत्व जैसा है वैसा, ऐसा ही मैं हूं, ऐसा भाष्यमान होता है, लगने लगता है। और जगत के सारे पदार्थ की महिमा उस वक्त चली जाती ही है, इतना महिमावंत पदार्थ की महिमा आती है कि जगत के पदार्थ की महिमा चली जाती है। कोई जगत में ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसकी महिमा रहे, ऐसा बनता नहीं है। जगत इष्ट नहीं आत्म थी, आत्मा से कोई अधिक पदार्थ है, तो जगत सारे जगत का जो वजन है वो छूट गया है, अधिकता छूट गई, वजन छूट गया, वजन छूट गया तो फिर परिणाम झुकेगा कहाँ से, खिंचाव रहेगा कहाँ से, ये मिट जाएगा। अनंत महिमावंत है, जितना अनंत महिमावंत स्वरूप है उतनी ही महिमा आने लगती है, उतनी महिमा लगती है वहां। हाँ, साकार निराकार का साकार आया, क्या अरूपी होने से उसको निराकार कहते हैं, और जैसा है वैसा, बिल्कुल वैसा का वैसा स्पष्ट, तो साकार हो गया, चौकस स्पेसिफिक आशीमान होने लगता है अपने रूप में, अपने स्वरूप में, मैं ऐसा कहते हैं कि वो छिपा रहेगा नहीं, छिपा नहीं रहेगा। अगर तेरी ऐसी खोज चलेगी तो फिर उसमें भी छिपने की ताकत नहीं है कि वो छिपा रह जाए। पूरा पूरा तो नहीं हो, अधूरा संकेत मात्र होता है। साकार वो भी एक शब्द हुआ कि नहीं, खास प्रकार का स्वरूप, ज्ञानमय आनंदमय परिपूर्ण और शुद्ध पवित्र, ऐसे कई विशेषण है, फिर भी पूरा पूरा उसको कहने की शब्द में शक्ति नहीं है, वो ताकत शब्द में भी नहीं है। बिचारी वाणी उसे क्या कहेगी, हाँ? वाणी बेचारी वहां उसको कह सकती, वो इतना महान है, वाणी में नहीं आता, विकल्प में भी
नहीं आता,
वहां समाता नहीं, वो सब छोटा पड़ता है, इतना महान है। उसका अनुभव करो और मौज करो, अनुभव की मौज में रह जाओ, अनुभव की मौज में डूबे रहो, बाहर निकलो ही मत, मस्त हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अंदर में मस्त हो जाओगे, पड़े रहो। बूढ़े लोग जंगल में क्यों पड़े रहते हैं? मस्त है अंदर में, इसलिए रहते हैं, वरना नहीं रह सके। उपयोग बाहर जाए तो रह नहीं सको, तो अंदर में मस्त है इसलिए रहते हैं। वहां तू चेतना प्रकाश रूप चिदानंद राजा को पा करके सुख पाएगा। ये बात तो सुखी होने के लिए है, ये बात तो सुखी होने के लिए है कि तुम सुख पाएगा, दूसरी कोई बात नहीं है। जिसको सुखी होना है उनको सुखी होने के लिए ये बात कहते हैं श्री गुरु। ऐसा है जो भ्रांति का दुगुण सुख को जिसने सच्चा सुख माना है, उनको ये लगता है कि ये मेरा सुख जुटाता है, दूसरी बात करके मेरा सुख जुटाता है। तो बच्चे लोग होते हैं ना, तो गर्मी के दिनों में वो नीम की निम्बोड़ी होती है ना, क्या कहते हैं नीम फल को, हमारे यहाँ निम्बोड़ी कहते हैं, लिमड़ा के फल को लिम्बोड़ी कहते हैं। आप छोटे छोटे लिम्बोड़ी को क्या कहते होंगे? लिम्बोड़ी बोलते हैं। वो पक जाती है तो पीली हो जाती है, और वैसे तो बहुत जो हरी होती है वो तो बहुत कड़वी होती है, जितना नीम कड़वा होता है उतनी वो कड़वी होती है, लेकिन पीली पक जाने से इसमें मीठा रस हो जाता है। तो हम भी छोटे छोटे थे ना, तो जैसे कैरी को घोल करके उसको रस बनाते ना, ऐसे करके चूस लेते थे, चूसते हैं बच्चे लोग, मीठी लगती है ना। अब वही गर्मी के दिन में आम भी पकती है, निम्बोड़ी भी पकती है और आम भी पकता है। अब बच्चे को बोले कि भैया छोड़ दे तुम निम्बोड़ी, तुमको आम देते हैं, तो कह नहीं मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, फिर भी उसके हाथ से ले लो तो रोने लग जाएगा, ये तो मेरा मीठी लिमोड़ी मेरे हाथ से ले लिया। लेकिन लिमोड़ी लेने का अभिप्राय नहीं है, वो आम देने की बात है। वह तो एक दफे आम खाएगा तो लिमोड़ी का नाम लेगा, हमें इसके लिए छूट जाएगी इसकी लिमोड़ी। तो ये जो संसार के सुख है वो लिमोड़ी जैसा है, उसमें कड़वा रस मिश्रित है और सुखाभास है, मिठापन का सुखाभास है। तो स्वरूप का आनंद और सुख रस को पिएगा तो पीछे मुड़ के देखेगा कैसा है। ऐसा उतना अलौकिक सुख होता है जो वचनातीत है। और यह मैं तुझको निज सुख का उपाय कहा, क्या कहा कि देखो ऐसे निज सुख की प्राप्ति होगी। यह निज सुख तो निज उपयोग में रहा है, कहा रहा है निज उपयोग में रहा है, निराकुल उपयोग स्वरूप आत्मा है, उसके साथ सुख तो अभेद रूप से रहा है। ज्ञान और सुख अलग अलग कभी रहते हैं, ज्ञान के साथ सुख अभेद है। क्या है? अभेद है, या ज्ञान का रूप ही सुख है। जैसे आदमी का, मनुष्य का कोई ना कोई रूप होता है, अच्छा रूप होता है, उसको कहते हैं कि ये स्वरूपवान है। ऐसे ये ज्ञान भी सुख से स्वरूपवान है, ज्ञान कद्रूपा नहीं है, स्वरूपा नहीं है, बहुत सुंदर है, लेकिन सुख से, सुख ही इसका स्वरूप और रूप है। और जब ज्ञान वो पहचाना जाता है तो सुख से पहचाना जाता है, इसलिए सुख साथ में लिया है, ऐसा ज्ञान नहीं पहचाना जाता। ज्ञान की पहचान होती है तो सुख के साथ होती है, क्योंकि इसका रूप ऐसा है। बिना रूप पहचान नहीं होती है क्या? किसी भी मनुष्य की बिना रूप पहचान कैसे होगी? इसके रूप से तो उसकी पहचान होगी। हाँ, यहाँ भी वही बुद्धि को यहाँ लगाओ ना, जो बुद्धि वहां काम करती है उसको यहाँ लगा। बुद्धि तो काम करती है, उसमें शक्ति है, पहचानने की शक्ति तो है बुद्धि में, उसको यहाँ लगाओ। कि ये निज सुख तो निज उपयोग में कहा, ये निज सुख निज उपयोग में कहा, फिर भी वो दुर्लभ कैसे हो रखा है, दुर्लभ कैसे हो पड़ा, ये बात कहने में आती है कि तुमको ये दुर्लभ लगता है या प्राप्त नहीं हो रहा है, कठिन लगता है, क्यों? इसके भी वजह है, इसका भी कारण है, वो कारण को सुनो। वो भी कहेंगे कि क्यों नहीं, कि यह परिणाम भूमिका में, ये परिणाम के अखाड़े में क्या जीव मोह मदिरा पी के क्या क्या है, क्यों नहीं पहचाना अपने सुख को, अपने ज्ञान को? मोह मदिरा पिया, ऐसे कोई कहे कि तुम दारू पीते हो बुरा लग जाएगा, हम तो छूटे भी नहीं, पीने की क्या बात करते हो? लेकिन ये भ्रांति रूप वो मदिरा है, वो तो दारू का बाप है, तो मदिरा का बाप है, और 24 घंटा पीता है, बोला तो एक दो पैक पी करके उतर जा रहे, ये तो पीते ही रहता है, तो कितना वो चढ़ेगा उनको, हाँ कितना नशा चढ़ेगा। यह परिणाम भूमिका में मोह मदिरा को पी करके अविवेक मल, क्या नाम क्या रखा फिर भगवान ने? मल, क्योंकि वो भी जोरावर है, दारू पीने वाला किसी को मार दे ना तो धीरे से नहीं मारेगा, मारेगा तो भी जोर से लग जाएगा। अविवेक मल उन्मत होकर के, मैंने पागल होकर के विवेक मल को जीत करके, पछाड़ करके, विवेक मल मैंने ज्ञान, उसको अपना जय स्तंभ, मैंने विजय स्तंभ स्थापित करके, रूपना मैंने स्थापित करके, गाड़ करके जोरावर मैंने ताकत वाला बन करके खड़ा है, अनादि से ये खड़ा है, अविवेक मल अनादि से खड़ा है, उसकी भी ताकत ज्यादा है, इसलिए अनादि से वो ज्ञान को पछाड़ रहा है, ज्ञान कभी कभी उसका प्रतिकार करता है, लेकिन ज्ञान की चलती कितना बलवान है, जोरावर मैंने अविवेक मल बलवान होकर के खड़ा है, बार बार जीव को पछाड़ता है और मार खाता है जीव, माने तब तो उतना जोर से आता है, ये तो अनंत ज्ञानी है, स्वद्रव्य तो अनंत ज्ञानी, उसको भी उड़ाता है, तो बाहर वाले ज्ञानी की तो क्या मजा, कृष्णा
है ऐसा होता है जैसे गेट में तो ऐसा होता है
होता है
होता है थाई छे
अनादि से थियो छे अनादि थी એવું જ થયું છે જો ઇનકે જો વચન હૈ ઇનકે જો વચન હૈ વચન કો અંદર મેં ઉતારે तो बाहर का जब्बा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब्बा तो सही है तो भी ले जाओ इसका, इसका तो कोई मूल्य लेकिन वचन की बात है कि उसको अंतर में
पकड़ने की बात
है अंतर में उतारने की बात क्या कहते हैं कि ऐसा अभी अविवेक मल जीत करके खड़ा है हा? अपना विदेश तुमको गार्ड करके खड़ा है कि देखो पछाड़ा ये अनंत ज्ञान के धने को भी मैंने पछाड़ा अनंत ज्ञान का और अनंत ताकत का धनी है लेकिन मारा उसको एक बार नहीं दो बार नहीं अनंत बार मारा अंदर से वो क्या शौर्य ना चाहिए हमारे कुदरत में चाणक चढ़वू जोइए एम मने पछाड़े से तो एम कानक चढ़वू जोइए फितूर यहाँ तो चाणक चढ़वू मने पछाड़े से छोड़ातन चढ़ना इसलिए अपने सुख निधि का विलास करने देता अंदर में अनंत सुख की निधि मौजूद है फिर भी उसको भोगने देता नहीं और दुखी 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 करता है परंतु विवेक मल का जोर होने से अविवेक मल को मारा जाए हिंसा की जाए हणो हण्यो हण्यो जाए हणना मैंने मारना हिंसा करना अविवेक मल को मारना है तो विवेक मल को बलवान होना चाहिए बात तो बराबर है लेकिन कैसे करें ये प्रश्न आएगा विवेक मल है वो ज्ञान है ज्ञान बलवान होगा तो मोह कमजोर होगा और मोह बलवान होगा तो ज्ञान कमजोर होगा अब ज्ञान ज्ञान को बलवान करें कैसे कि रुचि से पर रुचि को तोड़े और आत्मरुचि को बढ़ाएं तो पर रुचि से हटना है कौतूहल आदि जो भी है या दूसरे को में माथा लगाना है वो पर रुचि से हट जाए ये तो हमको बिल्कुल करना नहीं है पर रुचि से हटे और आत्मरुचि में आगे बढ़े अब ये दूसरा प्रश्न होगा कि आत्मरुचि होवे कैसे कि जरूरत महसूस होवे और रुचि जरूरत में से पैदा होती है अब देखिए कि अशांति और दुख हो ही रहा है शांति और सुख की जरूरत है कि नहीं है लेकिन अगर जरूरत है तो सब रास्ता है जहां चाह है वहां राह है चाह नहीं तो राह भी नहीं है देखो अब पसंद ये अपनी अपनी है दुखी हो रहा है अशांति हो रही है सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए और हमेश के लिए चाहिए या पूरी की पूरी चाहिए, तो उसका ये रास्ता है। जरूरत में से रुचि पैदा होगी और रुचि बलवान हो से विवेक मन भी बलवान हो जाएगा। ये इसका लाइन है, वो इसकी श्रेणी है, यही रास्ता है। सत्संग विचारना यहाँ से जरूरत, जरूरत तो वैसे है ही लेकिन गलत जगह पे जरूरत का निश्चय कर रखा है। जरूरत तो सुख शांति की है लेकिन ये करने से वो करने से ये पैसा मिलाने से अनुकूलताएं मिलाने से वो साधन मिलने से सुख शांति हो जाएगी, ये गलत निश्चय कर रखा है। तो इसके पीछे तो दौड़ता ही है अनादि से और सारा जीवन भी इसके पीछे बिताया और बिता रहा है। जैसे हमको इच्छा होती है, अनेक चीजें अनेक पदार्थ की इच्छा होती है कि नहीं होती है? वो पदार्थ मिल प्राप्त करने के लिए जुटाने के लिए पैसे चाहिए। अब उसमें बात कितनी है कि इच्छा हुई और पदार्थ मिला, सुखाभास हुआ, सुख तो नहीं हुआ सर, क्योंकि तुरंत दूसरी इच्छा होती है, तुरंत तीसरी इच्छा होती है, फिर भी कषायमंद होता है और सुखाभास होता है, आकुलता का डिग्री पारा कुछ डाउन होता है, नीचे आता है। इतने इतना सुख के लिए क्षणिक हम सारी जिंदगी मजदूरी करने के लिए तैयार है, है कि नहीं? तो निराकुल सुख शांति हमेश के लिए मुझे मिले, इसके लिए हमारी तैयारी कितनी देख लेना। झूठे सुख के पीछे भी सारा जीवन हम खर्च करने के लिए तैयार है, तो सच्चे सुख के पीछे हमारी सर्वार्पण बुद्धि कितनी डिग्री पे होनी चाहिए, इससे इसकी मात्रा बढ़कर आएगी पर प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि विवेक मल का जोर होने पर अविवेक मल की हानि होती है या वो उसकी ताकत टूट जाती है, तब निज निजी विल से, और जब अविवेक मल मरे तो आत्मा की निधि है, गुण निधि है अपने, वो खुलती जाएगी, उसका विकास हो जाएगा अंदर से। और वही कहा है कि पर रुचि रूप खोटो आहार सेवने पर, खोटा आहार लेने पर, बार बार सेवन मैंने बार बार लेने पर रुचि का झूठा आहार अपथ्य बार बार खाने पर जो शरीर को नुकसान करता है, वही बार बार लेवे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाएगा। वैसे पर रुचि रूप मिथ्या आहार खोटा आहार बार बार लेने पर, सेवन करने पर मिथ्या ज्वर आया, क्या वो मिथ्यात्व रूपी ताव ज्वर मैंने बुखार, मिथ्यात्व रूपी बुखार चढ़ा और बुखार चढ़ने से शरीर कमजोर हो गया, वैसे विवेक निर्बल हुआ, पर रुचि बढ़ने से ज्ञान कमजोर हो गया, ज्ञान का विवेक कमजोर हो गया। इसलिए कुतूहल वृत्ति को मिटा देना, कुतूहल बढ़ने से ज्ञान कमजोर होता है, पर रुचि से ज्ञान कमजोर होता है। अगर ज्ञान को बलवान बनाना है तो पर की रुचि बिल्कुल मिट जाने चाहिए, पर हाथ में तो कुछ आता नहीं, कितना भी कुतूहल वृत्ति से सारे जगत को जाने, हाथ में क्या आया, क्या मिला, कुछ मिला नहीं है, फालतू का समय शक्ति बिगड़ा। तब विवेक निर्मल बन निर्बल बना, इसलिए स्व आचार रूप पारा को श्रद्धा रूपी गुट्टी के पूट से सुधार कर उसका सेवन करे तो विवेक मल मिथ्या ज्वर मिटा करके सबल होकर के अविवेक को पछाड़े तब चिदानंद निधि का विलास स्वयं हो होए। स्वाचार लिया है वहां और स्वाचार का नीचे स्पष्टीकरण दिया है, स्वाचार रूप पारा का सेवन करने में आए। बात तो वहां आती है अवलोकन पर, बात तो आती है द्विजा अवलोकन पर आती है। क्या कहते हैं देखो कि इसलिए स्वाचार रूप पारा को श्रद्धा रूपी बुट्टी के पुट से सुधार करके मैंने शुद्ध करके उसका सेवन करे तो विवेक मल और मिथ्या ज्वर मिट करके सबल होकर के अविवेक को विवेक मल सेवन करे तो विवेक मल मिथ्या ज्वर को मिटा दे और सबल होकर के अविवेक को पछाड़े। तो क्या कहते हैं कि स्व आचार रूप पारा, ये औषधि का दृष्टांत दिया है, उपमा दिया है। पारा का सेवन कैसे करना है, शुद्ध करके सेवन करना, शुद्ध कैसे करके जड़ी बूटी से उसको शुद्ध किया जाता है। तो आचार है वो पारा है, आचार मैंने यहाँ परिणमन लेना है, आचार माने परिणमन। और श्रद्धा रूपी, श्रद्धा को यहाँ औषधि की बुट्टी बोला है। औषधियों में भी अनेक प्रकार की जड़ी बुट्टी होती है, उसको जड़ी बुट्टी इसलिए कहते हैं कि उस जड़ में से पैदा होती, जड़ मैंने मूल में से होती है और उसमें ताकत भी बहुत होती है। उसका फूट देना मैंने बार बार उसका सेवन करना। यहाँ कहते हैं कि जो विश्वास है, विश्वास ला करके वो श्रद्धा, यहाँ तो मुमुक्षु की भूमिका में तो विश्वास होना यही श्रद्धा है और परिणमन में ले आना कोई आचार है जैसे हम समझते हैं, लेकिन परिणमन नहीं करते, जैसा समझते हैं वैसा परिणमन नहीं करते। तो अब समझने का स्टेज पूरा हुआ, अब परिणमन करने का स्टेज है। जैसे वेदना में आना वो परिणमन का स्टेज है, उदासीनता में आना वो परिणमन का स्टेज है। तो वो स्वाचार है, वो क्या है, स्वाचार है, अपना में अपना परिणमन हो। समझे तो बहुत, लेकिन परिणमन नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं रहा है। तो अब बात रही परिणमन करने की, परिणमन करके आओ, अपने होमवर्क क्या देते हैं, परिणमन करने का देते हैं। समझ गया वो बात नहीं है, परिणमन करके आओ। ये जो परिणमन है वो स्वाचार है और विश्वास पूर्वक होता है। विश्वास नहीं हो तो अमलीकरण का बल आएगा नहीं। स्वाचार कहो या अमलीकरण कहो या परिणमन कहो, विश्वास पूर्वक दृढ़ता से बार बार ऐसा अमलीकरण का प्रयास।